الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة میرے قابل احترام مسلمان بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پوری شریعت کے تمام احکام کی روح ہے بلکہ پوری کائنات کی روح اس کو قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ कहने वाला मौजूद है, कयामत कायम नहीं होगी। गोया जब एक फर्द भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा तो फिर ये कायनात, ये दुनिया इस लायक नहीं है कि उसको बाकी रखा जाए, बल्कि कयामत कायम होकर उसकी बिसात लपेट दी जाए। शरीयत के सारे अहकाम और इबादात की रूह और उसकी जान अल्लाह का जिक्र है। क़ुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह अपना जिक्र करने का हुक्म दिया। बारी ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िकरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ए ईमान वालो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करो। ये भी एक अजीब बात है कि जिक्र के साथ कुरान पाक में कसीरन का लफ्ज़ जा बजा इस्तेमाल किया गया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات। देखो, यहाँ बहुत सारे आमाल अहले ईमान के बतलाए गए। उनमें कुछ आमाल वो हैं जिनके साथ लफ्ज़ कसीरन लग सकता था, वसाइमीन वसाइमात, रोज़ा रखने वाले, वहाँ वसाइमीन कसीरन आ सकता था। वलमुतसद्दिकात वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकात, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, सदका करने वाले, यहाँ भी कसीरन की सिफत लाई जा सकती थी। तो बहुत से सिफात जो यहाँ बयान किए गए हैं, बाज़ वो हैं जिन पे ये इजाफा किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन मज़्ज़ाकिरात, कि कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें। वह एक कसरत का ये साथ में लगाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िकरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो, कसरत से अल्लाह को याद करो। सुबह एक तस्बीह पढ़ ली, शाम को पढ़ ली, क्या इसका नाम है कसरत से अल्लाह को याद करना? नहीं। उठते बैठे बैठे, चलते फिरते, सोते जागते, हर हाल में अल्लाह को याद किया जाए, यह है कसरत से अल्लाह को याद करना। इन फ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख़्तिलाफ़ि लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि। देखो, बेशक ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन की आमद और रफ्त और आने जाने में लायातिन लिउलिल अल्बाब बड़ी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अक्लमंद कौन? क़ुरान में बारी ताला उलुल अल्बाब की ये बयान करते हैं, आगे वजाहत करते हैं, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे। आदमी की तीन ही हालतें हो सकती हैं, खड़ा है, बैठा है या करवट के ऊपर लेटा है। तो गोया ये हर हालत में अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे ही लोग इस लायक हैं कि उनको अक्लमंद कहा जाए। दुनिया तो बता नहीं किसको अक्लमंद कहती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में उलुल अल्बाब उन लोगों को करार दिया जो हर वक्त खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे अल्लाह को याद करने का अहतमाम करते हैं। व فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے، گویا ہر حال میں. جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں، تمام عبادتوں کے لیے کچھ قیود شریعت نے لگائی ہیں. نماز آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، گویا نجاست حقیقیہ حکمیہ ہر چیز سے پاک ہو. بہت سارے اوقات میں بھی، بعض اوقات ایسے شریعت نے رکھے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. روزے کے لیے بھی کچھ دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھے جا سکتے، لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں کی جائے، اس کے لیے کوئی قید نہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. وَذْكُرْ رَبْ، حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو باری تعالیٰ نے حکم دیا، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبینا و علیہم الصلوۃ والسلام، کہ نذکرک کثیرم، کہ نسبحک کثیرم و نذکرک کثیرا، وہاں اے اللہ تاکہ ہم تیری کثرت سے پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں. ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، دشمن سے مقابلے کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی دوسری تمام چیزوں کی طرف سے غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے. اس وقت بھی قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ پاؤں جمع کر ان کے مقابلے پر رہتے ہوئے، وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. فَإِذَا، جمعہ کی نماز کے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہ تجارت کے اندر بھی آپ دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یہ کثرت کا حکم، یہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ قید قرآن میں جگہ جگہ پر لگائی گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے. اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں، فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کتنا بڑا اور کتنا اونچا مقام ہے. حضرت صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ ذاکر ہوتا ہے، اور اس کے یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بدلہ کیا دیا گیا، میں تم کو یاد کروں گا. وہ بندہ جس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، مذکور ہوتا ہے. اور ظاہر ہے بندے کے اللہ کو یاد کرنے کے مقابلے میں اللہ کا بندے کو یاد کرنا، یہ کتنا اونچا مقام ہے. لیکن یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ اس وقت جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. کہاں اللہ ابھی عظمت و جلال، اللہ کا مقام، اللہ کی گویا اس کی شان کبریائی، اور کہاں گندا ناپاک بندہ. لیکن جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو آدمی میری یاد سے اعراض کرتا ہے، بے التفاتی کرتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. آج ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی، بے چینی کا شکار ہو گئے، ہر آدمی پریشان. کیوں؟ ہماری زندگیوں میں سے اللہ کا ذکر نکل چکا. ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، उठते बैठते चलते फिरते खड़े बैठे लेटे लेटे, लेकिन इसकी तरफ से गफलत हो गई। मुनाफिक वाला हाल, इदा कामू इला सलाते कामू कुसाला युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कि जब नमाज के लिए उठते हैं बड़ी काहिली और सुस्ती के साथ, ये उनका हाल बयान किया। युराउन अन्नास, लोगों को दिखलाते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। अब हम अब देख लें, अपना जायज़ा ले लें कि हम 24 घंटे में अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं, क्या इतना याद करते हैं जिसको यूँ कहा जाए कि अल्लाह ताला को कसरत से याद किया जा रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। गोया दिलों को सुकून और इत्मीनान देने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। आज हमने उसको भुला दिया, नतीजा यह है कि हम बेचैनी का शिकार हैं। न रात में चैन है, न दिन में चैन है, न घर में चैन है, न बाहर चैन है, बस हर आदमी परेशान। क्यों? अल्लाह ताला की तरफ से गफलत पैदा कर ली। ये कुरान पाक में अल्लाह तबरक ताला ने, ये तो चंद मैंने मिसाल के तौर पर पेश किए आयतें, वरना आप देखेंगे कि कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िक्रुल्लाह का, अपने याद का हुक्म दिया। हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद नकल करते हैं, قال الله انا عند ظن عبدي بي, बारी ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ, वाना माहू इदा ज़कर, और जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं अल्लाह मैं उसके साथ होता हूँ। गोया अल्लाह के ज़िक्र के नतीजे में बंदे को अल्लाह की मईयत, अल्लाह का साथ नसीब होता है। इससे बढ़कर और क्या शर्फ और इज्जत हो सकती है? फिर आगे बारी ताला फरमाते हैं, फ़ैन ज़करानी फ़ी नफ़्सी ही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है, तन्हाई में याद करता है, तो मैं उसको अपने दिल में तन्हाई में याद करता हूँ। वैन ज़करानी फ़ी नफ़्सी ही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, अगर वो वैन ज़करानी फ़ी मलई ज़करतुहु फ़ी मलई खैर मिन्हु, और अगर मजमे में याद करता है, बंदा कौन से मजमे में याद करेगा? इंसानों के मजमे में, तो मैं उनसे बेहतर फरिश्ते जो मासूम हैं उनके मजमे में उसको याद करता हूँ। वैन तकर्रबा इलैया शिबरन, अगर बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आता है, तो बारी ताला फरमाते हैं, तकर्रब तो इलैहि ज़िरान, एक हाथ, ये एक हाथ जो होता है ना वो दो बालिश्त का होता है, आप नाप कर देख लो, ये बड़ी उंगली के सिरे से लेकर कोहनी तक पूरे दो बालिश्त, न एक दौरा कम न ज़्यादा दो। गोया बंदा जितना आगे बढ़ता है अल्लाह उससे दुगना। वइन तकर्रब इलैया ज़िरान तकर्रब तो इलैहि बान, और अगर वो एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं एक बा या आप दोनों हाथ जब आदमी फैला देता है ये बा कहलाता है। तो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बा यानि चार हाथ, चार हाथ, एक बा है ये चार हाथ हुए, एक हाथ ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। नापने के लिए हाथ का जो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी उंगली के सिरे से लेकर कोहनी तक डेढ़ फीट होता है, तो डेढ़ और डेढ़ तीन और तीन छः फीट। एक हाथ अगर बंदा मेरी तरफ गोया बढ़ता है तो मैं चार हाथ उसके करीब होता हूँ। वइन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन, बारी ताला फरमाते हैं, अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ कर, क्या शान है, कहाँ नापाक कतरे मनी से बना हुआ बंदा और कहाँ अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत वाली ज़ात। लेकिन बंदा जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ये तवज्जो फरमाते हैं। आज किसी को मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर जमहूरिया किसी मजलिस में याद कर ले और कोई आके बताए फलाने मौके पर तुम्हारा तज़किरा हुआ था तो फूला नहीं समाता। अल्लाह ताला अपने बंदे को याद करे, इसके लिए उससे बढ़कर इज्जत और शर्फ की बात और क्या हो सकती है। और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो वो बंदा जो अल्लाह को याद करता है उसकी मिसाल, और जो अल्लाह को याद नहीं करता उसकी मिसाल ऐसी है जैसे जिंदा और मुर्दा। याद करने वाला जैसे जिंदा और अल्लाह को याद नहीं करता वो मुर्दा। गोया या अल्लाह के जिक्र से गफलत एक मौत है, और अल्लाह की याद में लगना यही असल ज़िंदगी का हासिल है। और इसी को एक बुज़ुर्ग थे अपने एक दोस्त की मुलाकात के लिए गए, वो भी अल्लाह वाले थे। रास्ते में एक जगह चलते चलते जब थकावट हुई एक दरख्त के नीचे आराम के लिए ठहरे। वहाँ दरख्त के ऊपर दो परिंदे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछता है, अल्लाह ने इनको उन परिंदों की बात भी समझा दी। तो एक दूसरे से पूछता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरा कहता है वो फलाने की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो वो पूछने वाला कहता है उनका तो इंतकाल हो गया। अब इन्होंने सुना तो भाई अब इंतकाल हो गया और मैं तो जा रहा हूँ मुलाकात के लिए, क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे ख्याल आया कि अब आधी मुसाफत तो तय कर चुका हूँ, अब आधी बाकी है, अगर इंतकाल ही हो गया है तो ताज़ियत करके आ जाऊँगा, काहे को वापस लौटूँ, निकला हूँ तो बहरहाल पूरा ही सफ़र कर लूँ। वहाँ पहुँचे तो वो बुज़ुर्ग जिंदा सलामत मौजूद हैं। उनका उन्होंने कहा, हजरत अजीब मामला है, क्या हुआ, परिंदे भी झूठ बोलने लगे। क्या हुआ, मैं आ रहा था इस तरह एक जगह पर आराम के लिए थोड़ी देर के वास्ते बैठा, दो परिंदे आपस में ये बात कर रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहा था ये कहाँ जा रहे हैं। दूसरे ने कहा फलां साहब आपका नाम लेकर कि उनकी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो वो कहता है उनका तो इंतकाल हो गया, तो अब आप तो जिंदा सलामत मौजूद हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने पूछा ये कौन सा वक्त था, इन्होंने याद किया फला वक्त, तो इन्होंने कहा फला वक्त ये गुफ्तगू, ठीक कहा उसने, उस वक्त मैं अल्लाह की याद से गाफिल था। उसी को उस परिंदे ने ताबीर किया कि उनका तो इंतकाल हो गया। हकीकत तो ये है कि ये अल्लाह की याद यही हमारी ज़िंदगी है, और ये गफलत जो है हमारे हक में मौत का हुक्म रखती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्न शराइल इस्लाम कद कसरत अलैहि, इस्लाम के अहकाम तो बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई किसी चीज़ को अपने लिए दस्तूर ज़िंदगी बनाऊँ, इन्नी फ़ाखबिरनी बेशई अस्तन्नो भी, आप मुझे कोई ऐसी बात बतला दीजिए कि जिसको मैं हमेशा गोया लाजिम पकड़ लूँ, अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन बिज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़बान अल्लाह की याद से तरोताज़ा रहनी चाहिए। गोया हर वक्त अल्लाह को याद करो, हर वक्त अल्लाह को याद करो, ये है एक ऐसी चीज़ जिसको आदमी अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनावे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ के मैल को साफ़ करने वाली एक चीज़ होती है। कपड़ा मैला हो जावे तो उसका मैल काई से दूर करते हैं, साबुन से। लूहा मैल मैल चढ़ जाए लूहे के ऊपर, जंग चढ़ जाए तो भट्टी में डाल करके उसको दूर किया जाता है। हर चीज के मैल को दूर करने के लिए उसके मुनासिब केमिकल हुआ करता है। दिल के ऊपर मैल चढ़ जाए तो दिल के मैल को दूर करने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह का जिक्र। जिक्रुल्लाह से दिल की गंदगियाँ, उसका मैल साफ होता है। वमा मिन शैइन अंजा मिन अज़ाबिल्लाह मिन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह की जिक्र से बढ़कर कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से नजात दिलाने वाली नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, अय्युल इबाद अफजल व आज़म दरजतन इंदल्लाह यौमल क़यामा, कि अल्लाह के बंदों में कौन सा बंदा क़यामत के दिन सबसे बड़ा हुआ और ऊंचे मकाम और मर्तबे वाला होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, वो बंदे जो कसरत से अल्लाह को याद करते हैं और वो बंदियां जो अल्लाह को कसरत से याद करती हैं। बहरहाल क़ुरान में हदीस में बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने की ताकीद फरमाई गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये अल्लाह को कसरत से और बहुत ज़्यादा याद करने का जो हुक्म दिया गया ये क्यों दिया गया? नऊज़ु बिल्लाह, क्या उसमें अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा है कि बंदे अल्लाह को याद करेंगे तो उसकी वजह से नऊज़ु बिल्लाह क्या अल्लाह की शान बढ़ जाएगी, या बंदे का कोई फ़ायदा है? ज़ाहिर है बंदों के इस तरह याद करने से अल्लाह की अजमत, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई और जो है उसकी अजमत में ज़्यादती होने वाली नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है हदीस कुदसी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद नकल किया है। बड़ी लंबी रिवायत है, उसके दो ही टुकड़े जो हमारे इस मौजू से ताल्लुक़ रखते हैं जिक्र करता हूँ। बारी ताला फरमाते हैं, या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम जिन्नकुम व इंसकुम कानू अला अतका कल्ब रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैया, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे जिन्नात और इंसान, तुम में जो आदमी सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला है, यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बन जा, सारी दुनिया के इंसान ऐसे बन जावें, ऐसे फरमाबरदार, तो बारी ताला क्या फरमाते हैं, मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शया, मेरी हुकूमत में, मेरी अजमत और किबरियाई में, मेरी शान में इसकी वजह से कोई ज़्यादती होने वाली नहीं। या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम जिन्नकुम व इंसकुम कानू अला अफजरे कल्ब रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शया, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे जिन्नात और इंसान, तुम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाफरमान है, कौन? शैतान, ऐसे बन जाएं, सारी दुनिया के इंसान ऐसे बन जाएं, तो बारी ताला क्या फरमाते हैं, मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शया, उसकी वजह से मेरी हुकूमत में, मेरी शान में, मेरी अजमत में, मेरी किबरियाई में कोई कमी आने वाली नहीं। वो ज़ात तो उस वक्त भी अजीम है और जब सारी दुनिया उसकी इताअत और फरमाबरदारी करेगी, और उस वक्त भी अजीम रहेगी जब कोई भी उसके हुक्म पर नहीं चलेगा, उसकी शान में कोई कमी आने वाली नहीं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामर बरकात, तुमने एक मौके पर वाक़या ज़िक्र किया है कि फरमाते हैं कि जब मैं स्पेन गया और करतबा की जामे मस्जिद, जो अपने ज़माने की बहुत बड़ी मस्जिद, बल्कि ये मस्जिद नबी जो मुसक्कफ़ हिस्सा शाफात के ज़माने में बना, उससे पहले दुनिया की कोई मस्जिद इतनी बड़ी मुसक्कफ़ शक्ल में नहीं थी। तो कहा कि जब गया तो चूँकि स्पेन मुसलमानों के हाथ से जब निकला है तो ईसाइयों ने वहाँ की तमाम मस्जिदों को गिरजाघर बना दिया। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो बहुत बड़ी मस्जिद, मैं भी गया हूँ, हम लोग वहाँ बरतानिया से वहाँ गए थे स्पेन, मेरे हम 12 साथी थे, वहाँ बाकायदा उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है सख्त। वैसे आप जैसे जानते हैं तारीखी इमारतों की मुलाकात के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए टिकट लेना पड़ता है। हमारा साथी जब टिकट लेने के लिए गया तो टिकट लेने वाले ने हमारा हुलिया देखकर वो समझ गया था कि ये लोग कुछ नमाज वगैरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टिकट लेने वाले ने उनको ताकीद की कि देखना वहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, कोई अगर कोशिश करेगा तो उसी वक्त तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा पकड़ के। इतना ही नहीं बल्कि उनको उस पर भी इत्मीनान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हुलिये इस नौ के थे, उसने फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी वाले ने फ़ोन करके एक मुस्तकिल दस्ता 12 सिपाहियों का मंगवाया और हम में से हर एक के साथ एक एक सिपाही लगा दिया ताकि ये नमाज न पढ़ने पाए। हमारे एक साथी थे, आते बेचारे बड़ी मोहब्बत वाले, हमारे मेरे साथ वहाँ भी बरतानिया वगैरह जाना होता है, फ्रांस वगैरह तो साथ में रहते हैं, तो वो उन इस इंतज़ार में थे कोशिश में, तो वो यूँ समझ कर दो चार सुतनों की आड़ में आकर अभी तो यूँ हाथ उठाया नहीं था नीयत बांधने के लिए, वो सिपाही ने पकड़ कर उनको दरवाजे से बाहर कर दिया। हमें अब हमको तो नमाज पढ़नी थी, क्यों बहरहाल मैंने भी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई, तो बैठे बैठे एक स्टूल के ऊपर इशारे से पढ़ ली, लेकिन वो इस तरह रुकू सदे की नौबत नहीं आई। तो बहरहाल मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं कि मैं और मेरा साथी जो है जब वहाँ मस्जिद की ज़्यारत के लिए गए हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसको भी उन्होंने उस मस्जिद में 3 गिरजे बना रखे इधर इधर, और उसका जो मेहराब वाला हिस्सा है वो जूं का तूं बाकी रखा है। मुसलमान ज़्यारत के लिए आते तो वो उसको अपनी असली हालत के ऊपर, उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। कहाँ मेहराब वाले हिस्से में हम पहुँचे तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि नमाज का वक्त था, मैंने अपने साथी से कहा कि भाई अजान दे दो हल्की आवाज़ में और हम जल्दी से 2 रकात पढ़ लें। अजान दी और कोई आवे उससे पहले जल्दी में 2 रकातें भी अदा कर ली। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जिस वक्त सद्दे के लिए मैंने अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर रखा तो दिल की अजीब कैफियत थी, दिल में ये ख्याल आया यही वो मस्जिद थी जहाँ से अजान की आवाज़ जब गूंजती थी तो हज़ारों कदम नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ते थे, और जमात के साथ जब नमाज अदा की जाती थी तो हज़ारों पेशानियाँ अल्लाह के सामने सजदा रेज होती थी। आज अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर एक कदम भी यहाँ आने वाला नहीं। उस वक्त भी अल्लाह अपनी अजमत और जलाल और किबरियाई के साथ था और आज भी है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं। सारी दुनिया अल्लाह की इबादत करे उसकी बुजुर्गी में शान में इजाफा होने वाला नहीं, सारी दुनिया नाफरमानी पर तुल जावे कोई कमी होने वाली नहीं, वो तो अपनी जगह पर। जो मौलाना रूम फरमाते हैं मन न गर्दम पाक अस तस्बीह शाह पाक हम ईशान शमंदो दुर्फिशां, के वो अल्लाह की इस तरफ से गोया बयान कर रहे हैं कि इन बंदों के सुभान अल्लाह कहने से मैं पाक नहीं होता। सुभान अल्लाह का क्या मतलब? अरबी जानने वाले जानते सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, या अल्लाह की ज़ात पाक है, उसका तर्जमा यूँ करते हैं। तो जब हम कहेंगे सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह कहकर हम अल्लाह की ज़ात की पाकी बयान करते हैं। तो मौलाना रूम अल्लाह की तरफ से बतला रहे हैं कि तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने से मैं पाक नहीं होता, पाक हम ईशां शबंदो दुर्फिशां, बल्कि सुभान अल्लाह कहने से हमारी गंदगियाँ दूर होती, हमारी ज़बानों की गंदगियाँ अल्लाह का नाम लेने से दूर होती है। बल्कि हक तो ये था कि हमारी ज़बानें ऐसी गंदी हैं कि उनको अल्लाह का नाम लेने की भी इजाज़त न दी जाती। फारसी का शायर कहता है हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीश, कि मैं हज़ार मरतबा अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से धोऊं तो भी अल्लाह तेरा नाम लेना बड़ी बेअदबी की बात है। कहाँ ये हमारी नापाक जबान है, पता नहीं हम उससे क्या क्या हरकतें करते हैं, उससे क्या अल्लाह का नाम लिया जाएगा। लेकिन उसका करम है कि उसने अपना नाम लेने की इजाज़त नहीं बल्कि हुक्म दिया, हमको हुक्म दिया कि तुम मुझे याद करो। ये भी अल्लाह की मोहब्बत की बात है, अल्लाह ताला को अपने बंदों से मोहब्बत है और बंदों को भी अल्लाह से मोहब्बत है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान में हदीस में अल्लाह का जिक्र और अल्लाह को याद करने का जो हुक्म दिया गया, क्या इसका फ़ायदा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को पहुँचता है? नहीं, बल्कि ये जिक्रुल्लाह का जो हुक्म दिया गया उसका फ़ायदा खुद इंसानों को। क्यों? इसलिए कि आदमी जितना ज़्यादा अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह को याद करने के नतीजे में अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेहज़ार उसके दिल में पैदा होगा, अल्लाह की याद उसके दिल में बैठेगी, जमेगी। जब कोई आदमी कसरत से किसी को याद करता है तो उसकी याद उसके दिल में जमती है और हर वक्त दिलो दिमाग में वही शख्सियत घूमती है। जब बंदा कसरत से अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह को याद करेगा, तो ये चीज़ बंदे के दिलो दिमाग में अल्लाह के इस्तेहज़ार और अल्लाह की याद के जमने का ज़रिया बनेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि बंदा अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाएगा। ये दुनिया में गुनाह क्यों हो रहे हैं? ये गुनाहों के होने की वजह गफलत, आदमी को अल्लाह याद नहीं रहता। अगर अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार हो, जैसे आप, मैं मिसाल दिया करता हूँ कि भाई पूरी मस्जिद खाली है, कोई नहीं है, यहाँ मस्जिद नहीं, कोई कमरा है, कोई बड़ा हॉल है, खाली है, वहाँ कोई नहीं है, और कोई दुनिया की हसीन औरत आ जाए आपकी निगाहों के सामने वहाँ, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं और जहाँ उसकी स्क्रीन है वहाँ लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि हॉल में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जब ये ख्याल रहेगा आदमी को कि सीसी कैमरे हैं, तो फिर वहाँ बज़ाहिर हॉल खाली है और कोई नहीं है देखने वाला बज़ाहिर, तो भी वो अपने आप को उस औरत की तरफ निगाह करने से बचाएगा। क्यों बचाता है? देख, इस तो यहाँ जब बंदे के दिल में ये इस्तेहज़ार होगा, ये ख्याल होगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो फिर कभी भी उससे किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हो सकता, कोई नाफरमानी का काम, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहु मोमिनुन, ला यसरिकु सारिकु हीना यसरिकु वहु मोमिनुन, ला यशरबु शारिबु हीना यशरबु वहु मोमिनुन, के जिना करने वाला जिस वक्त जिना कर रहा होता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। मोमिन नहीं होता यानी गोया उस वक्त उसके दिल में अल्लाह की याद का इस्तेहज़ार, अल्लाह की याद का गोया ये नहीं होता इस्तेहज़ार। अगर इस्तेहज़ार होता और ये समझता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो कभी वो जिना का इर्तिकाब नहीं करता। चोर जब चोरी कर रहा होता है उसको इस्तेहज़ार नहीं होता। इस्तेहज़ार होता, जैसे मैंने कहा ना, वो हॉल में जब इस्तेहज़ार है कि मुझे कोई देख रहा है, तो वो अपने आप को ऐसी नारवा हरकत से पूरे तौर पर बचाने का अहतमाम करता है। तो गोया ये ज़िक्रुल्लाह की कसरत का एक बड़ा फ़ायदा बंदों को ये हासिल होता है, उसकी वजह से अल्लाह की याद उसके दिल में जमती है और अल्लाह की ज़ात का हर वक्त इस्तेहज़ार होता है, और ये वो चीज़ है जो उस बंदे को अल्लाह की नाफरमानी से बचाती है। एक फ़ायदा तो उसका ये हुआ। दूसरा फ़ायदा ज़िक्रुल्लाह की कसरत का ये होता है कि हज़रत मौलाना तकी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह मरकदहू के अजल खलफा में से थे, उनका मकूला नकल करते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र जो है ना, वो एक एनर्जी है, तवानाई, एक ताकत है, कि अब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो ज़िक्र करने की नतीजे में आपके दिल में क़ुव्वत पैदा होगी, आपके इरादों में कुव्वत पैदा होगी, आपकी हिम्मत में कुव्वत पैदा होगी। फरमाया करते थे वो कि सुबह को जब आप नाश्ता करें, चाय पिए, उससे पहले कुछ अल्लाह का जिक्र कर लें। जैसे आदमी नाश्ता करता है ताकि आगे आगे जो काम करने हैं उन कामों को अंजाम देने के लिए जिस्मानी तौर पर कुछ कुव्वत पैदा हो जाए, तो इसी तरीके से आप जब ज़िंदगी के मैदान में घर से बाहर निकलेंगे तो नफ्स और शैतान आपको अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाने के लिए आपके मुकाबले पर आएंगे, और उनको के मुकाबले में आपको गलबा और कुव्वत देने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र के नतीजे में बंदे में इतनी ताकत, उसके दिल में इतनी ताकत, उसके इरादे में, उसकी हिम्मत में गया इतनी ताकत पैदा होगी और उसके अज़्म में, जिसकी वजह से वो शैतान और नफ्स का मुकाबला करे। इसलिए कि कोई भी गुनाह के काम से बचने का तरीका यही है कि आदमी गया एक मरतबा तय इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले कि मुझे अल्लाह की नाफरमानी नहीं। गया आप जब बाहर निकलेंगे, आपका नफ्स और शैतान आपको बदनजरी, पराई औरतों को देखने के लिए उकसाएगा। अब इस बदनजरी से बचने का तरीका क्या है? उस किसी वजीफे से आप नहीं बच सकेंगे। बाल लोग वजीफा पूछते हैं, ज़रा वजीफा बता दो। बदनजरी का वजीफे हज़ार पढ़ लें, उससे वो नहीं। असल तो यह है कि आप अपने एक मरतबा तय कर लें, अज़्म कर लें, इरादा कर लें कि मुझे अपने आप को इस हरकत से बचाना है, और इरादा करने के बाद फिर हिम्मत से काम लेकर अपने उस इरादे को अमली जामा पहनाएं। जैसे एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि आपको ख़ारिश, खुजली हुई है, खुजली, या आपको कोई ज़ख़म हुआ है, वो ज़ख़म जब ठीक होने लगता है, भरने लगता है, तो उसमें ख़ारिश पैदा होती है। अब अगर आदमी उस वक्त खुजला ले तो फिर वो ज़ख़म दोबारा क्या हो जाता है? ताज़ा हो जाता है, हरा हो जाता है। और इसी तरह जब भी वो भरने वाला होता है, उसमें खुजली का, ख़ारिश का तकाजा पैदा होता है। कोई आदमी ये चाहता है कि ज़ख़म मुंदबिल हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरत है कि उसको हाथ न लगाए। तो अब उसके लिए क्या होगा? अपने आप को तय करना पड़ेगा, पुख्ता इरादा करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं खुजलाऊंगा नहीं। आदमी यूँ समझता है कि खुजलाने से वह तकाजा जो पैदा हुआ ना खुजलाने का, तो उस खुजलाने से वो तकाजा ख़त्म हो जाएगा? नहीं, खुजलाने से वो तकाजा और ज़्यादा पैदा होगा, उसमें कुव्वत पैदा होगी। गुनाह का भी यही हाल है। आप किसी अजनबी औरत को देखने का आपके दिल में तकाजा पैदा हुआ तो आदमी यूँ समझता है ज़रा देख लो एक मरतबा, बस देख करके फिर इत्मीनान हासिल कर लो। अरे देख करके कहाँ इत्मीनान हासिल होने वाला है, वो तो देखने के बाद ये आग और भड़कती है। जैसे खुजलाने के बाद फिर खुजलाने का तकाजा और इतना शिद्दत इख्तियार करता है कि आदमी फिर इतनी कुव्वत के साथ खुजलाता है कि खून निकलने लगता है, तो भी उसको सुकून और चैन हासिल नहीं होता। तो इसका इलाज खुजलाना नहीं है, इसका इलाज यह है कि अपने आप को रोका जाए। तो एक मरतबा तय कर लिया, इरादा कर लिया, अज़्म पुख्ता इरादा किया कि नहीं खुजला, और फिर हिम्मत से काम लेकर अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाया। यानी गोया जब इरादा किया नहीं खुजलाना, अब खुजलाने का तकाजा पैदा हुआ, तो हिम्मत से काम लेकर के अपने आप को खुजलाने से क्या किया? रोका। जब रोकेंगे तो रोकने के थोड़ी देर के बाद वो तकाजा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया अब दोबारा आने वाला नहीं, नहीं ख़त्म हो, जैसे वो खुजलाने के बाद भी यूँ समझे थे कि आप ख़त्म हो गया, नहीं, खुजलाने के बाद भी दोबारा आया। यहाँ उसको रोकने के बाद भी दोबारा तकाजा पैदा होगा, लेकिन अब दोबारा जब तकाजा पैदा हो तो फिर आप हिम्मत से काम लेकर फिर अपने आप को खुजलाने से रोकें। अब यह एक फ़र्क है, पहली सूरत में जब आपने हिम्मत की थी ना, तो उस हिम्मत के लिए आपको जितना ज़ोर लगाना पड़ा, गोया 100 पावर का ज़ोर लगाना पड़ा। दूसरी मरतबा जब तकाजा पैदा होगा खुजलाने का और उसको रोकने के लिए आप जब हिम्मत करेंगे तो 1 टका कम हो जाएगा, यानी 99 पावर का जोर लगाना पड़ेगा, पहले जितना जोर नहीं कुछ कम, इस तरह धीरे धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर के बाद तकाजा पैदा होगा, उस वक्त भी नहीं खुजलाएंगे, इस तरह धीरे धीरे एक वक्त आएगा ये तकाजा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हिम्मत जो होती है ना, हिम्मत ही आदमी की असल ताकत है। आदमी जितने दुनिया के और आखिरत के काम अंजाम देता है, इसी हिम्मत से, अपने गुजराती में कहते हैं हिम्मत बरदा तो मदद खुदा, तो हकीकत यही है कि हमारे हजरत शेर पढ़ा करते थे, हिम्मत बलंदा कि बकदरे हिम्मत है तू, बेबुवत पेशे खुदा व खल्क एतबार है तू, अपनी हिम्मत को बुलंद रखो, तुम्हारी हिम्मत जितनी बुलंद होगी अल्लाह के यहाँ भी और मखलूक के यहाँ भी, तुम्हारा एतबार उसी के मुताबिक होगा। जो बुलंद हिम्मत लोग होते हैं वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, और जो पस्त हिम्मत होते हैं छोटे छोटे काम भी उनसे अंजाम पा सकते नहीं हैं। तो गोया ये हिम्मत जो है ना, इसी हिम्मत के ज़रिए से आदमी अपने आप को क्या करता है, मुकाबला करता है, किसका, शैतान का, नफ्स का, और मुकाबला करके उनको चित करता है और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाता है। इस हिम्मत के अंदर भी जो है ताकत पैदा करने का तरीका यही है कि इस हिम्मत को बार बार इस्तेमाल किया जाए, जितना बार बार इस्तेमाल करेंगे उतनी हिम्मत में क्या होगी, ताकत। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, वो सलाहियतें ऐसी हैं कि देखो चीज़ों का हाल तो ये है कि हर चीज़ के अंदर जो खूबी और सलाहियत है उसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना उसमें क्या होगी, कमी। ये कुर्सी है, वो आदमी बैठ करके उससे फ़ायदा उठाता है, जितना ज़्यादा बैठेंगे उतनी ये जल्दी घिस जाएगी और उतनी जल्दी क्या है, पुरानी और बोसीदा होकर ख़त्म हो जाएगी। ये माइक है, ये कपड़ा है, जितना ज़्यादा पहनेंगे उतना बोसीदा होकर ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की चीज़ों का यही हाल है कि उनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ख़त्म होगा। अल्लाह ने इंसान को जो सलाहियतें अता फरमाई हैं उनका मामला उल्टा है, उनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो और बढ़ेगी। देखो चलने की सलाहियत, आप रोज़ाना वॉकिंग के लिए जाओ, है ना, चहलकदमी के लिए, तो एक मील, दो मील, तीन मील, चार मील, जितना दौड़ोगे, ये जो दुनिया में दौड़ के मुकाबले होते हैं और जो दौड़ने में आगे जो है वो बड़े बड़े उसके लिए जो है इनामात होते हैं वो हासिल करते हैं, कैसे आप कसरत से दौड़ते हैं, तो ज़्यादा दौड़ने की वजह से क्या उनकी दौड़ने की सलाहियत कम हुई, कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी, समझाया कि नहीं। एक हाफजा यानी याद शक्ति जो है, आप आज एक चीज़ को याद कीजिए, दो सतरें याद कीजिए, याद करने की वजह से आपकी याद शक्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। कल को आप 2.5 सतरें याद करेंगे और परसों 3 और परसों 3.5 और फिर 4 और फिर 5 न 10, यहाँ तक के एक वक्त आएगा कि बड़ी बड़ी गोया कई कई सफ़े की इबारतें आप जो है थोड़े से वक्त में क्या कर लेंगे याद। बोलने की सलाहियत, तो ये जो बड़े बड़े मुकर्रीन हैं कैसे उन्होंने ये बाकायदा उसकी मशक करते हैं और तकरीरें करते हैं, तो जितना ज़्यादा बोलते हैं बोलने की ये सलाहियत क्या होती है, बढ़ती। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें अता फरमाई उनका हाल ये है कि आदमी जितना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेगा ये कुआ में इजाफा, तो ये हिम्मत जो है, हिम्मत, इस हिम्मत को हम जितना इस्तेमाल करेंगे तो शैतान का मुकाबला, नफ्स का मुकाबला करने के लिए अपने अज़्म को, पुख्ता इरादे को और हिम्मत को काम में लाएंगे उतना ही उसमें क्या आएगी, ताकत, ताकत आएगी, उतनी हिम्मत बढ़ेगी, उतना हम और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे और हमारे मुकाबले में नफ्स और शैतान उतना कमज़ोर बनेगा। तो हिम्मत में ताकत पैदा करने का ज़रिया कसरत से इस्तेमाल करना, और अल्लाह का ज़िक्र जो है वो भी हिम्मत के अंदर क्या पैदा करता है, कुव्वत। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये ज़िक्रुल्लाह एक एनर्जी है, एक तवानाई है। आप सुबह में जब अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह के ज़िक्र का अहतमाम करेंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसी कुव्वत पैदा करेंगे, आपके इरादों में ऐसी कुव्वत पैदा करेंगे, आपकी हिम्मत में ऐसी कुव्वत पैदा करेंगे कि उस कुव्वत के ज़रिए आपके लिए नफ्स और शैतान का मुकाबला करना क्या हो जाएगा, आसान। और नफ्स और शैतान आपको आसानी से गुनाह करने के लिए आमादा नहीं कर सकते। अभी तो क्या हाल है, नफ्स और शैतान को हमें गुनाह में डालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़रा एक लम्हे में वो हमको पछाड़ के रख देते हैं, हम उनका मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो ये अल्लाह का जिक्र जो है वो एक तवानाई है, और इस तवानाई के नतीजे में आदमी नफ्स और शैतान के मुकाबले में जो है अपने आप को कामयाब बनाता है। तो ये फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा, पहला फ़ायदा इस्तेहला, अल्लाह की याद दिल में जमती है, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि कसरत से अल्लाह का नाम लेने की वजह से दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत। और ये मोहब्बत जो है ना, वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना हमारे लिए क्या कर देगी, आसान। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी क्या करती है, आसान करती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कोया उसी को अब बहुत उमदा अंदाज से ए तू क्या है ए तू दवाए जुमला इल्लत हाय माँ, हमारी तमाम बीमारियों की दवा और जो है हमारे तमाम इनका मरकज़, तू ही हमारा मुआलिज है, जालिनोस है, बुखरात है। गोया ये मोहब्बत जो है, उस मोहब्बत की वजह से आदमी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। देखिए ये लोग आप देखते हैं जो मुलाजमत करने के लिए सर्विस के लिए रोज़ाना जाते हैं, सुबह उठते हैं, कितना जल्दी उठते हैं। उनको अगर जाना है यहाँ से किसी दूर की 50 मील 60 मील राजकोट रोज़ाना जो आके अप डाउन करने वाले बड़े शहरों में, तो सुबह की ट्रेन से जाते हैं, 4 बजे की गाड़ी से उठते हैं रोज़ाना। क्यों? वो पैसों की मोहब्बत, तनख्वाह के साथ मोहब्बत है। इन्हीं लोगों का आप इतवार के दिन देखेंगे कि 11 और 12 बजे तक तकिए से सर उठाने के लिए तैयार नहीं है ना, कोई किसी हाल में भी मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ माल की मोहब्बत की वजह से, एक औरत है उसको बच्चे का की तमन्ना है, बच्चे की मोहब्बत है, तो वो बच्चा हासिल करने के लिए कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाती है। उसको कोई कहे कि देख अरे फलानी औरत तू देख नहीं रही है कि सर्दी के ज़माने में बच्चा रोता है, पेशाब करता है, और उसकी वजह से उस माँ को रात को उठना पड़ता है, ठंडे पानी से अपने हाथों को धोना पड़ता है, इसका बिस्तर बदलना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, रात भर वो सोने नहीं देता काई को। तो बच्चे वो माँ कहेगी अरे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। तो बहरहाल ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के लिए हर मुश्किल को आसान करती है। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करने के नतीजे में जब दिल में पैदा होगी तो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना, सुबह को तहज्जुद के लिए उठना, फजर की नमाज के लिए उठना, जमात की पाबंदी करना और गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये बंदे के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये वह फ़ायदा है किसका, बंदे का। ये ज़िक्रुल्लाह की कसरत के अंदर अल्लाह का फ़ायदा नहीं, हमारा फ़ायदा है। अब यह है कि ये ज़िक्रुल्लाह करते हैं तो उसके क्या, बाज़ लोगों को नफ्स धोखा देता है कि भाई हम अल्लाह को याद करते हैं खाली ज़बान, दिल तो हमारा गाफिल होता है। वो एक फ़ारसी शायर ने कहा है, बर ज़बान तस्बीह हो दर दिल, गाओ खर ई चुनी तस्बीह के दारद असर, कि ज़बान के ऊपर तो अल्लाह का नाम है और दिल में गाय और गधा। यानि किसान आदमी होता है तो अपने किसान के आलात उसके दिल में, हर आदमी को जो जिस मशगले से ताल्लुक़ रखता है। अब जैसे एक दुकानदार है तो जब कुरान पढ़ने के लिए बैठता है तो ज़बान के ऊपर तो कुरान के अल्फाज होते हैं और दिल में दुकान का तसव्वुर होता है। तो अब ऐसे मौके पर नफ्स और शैतान उसको क्या धोखा देते हैं, अरे तेरी इस किरात से तिलावत से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, बेकार है, तेरा दिल तो गाफिल है, तू तो उधर पड़ा हुआ है दुकान के फिक्र में, उसके तसव्वुर में ज़बान पर ये कलिमात हैं, कुरान के अल्फाज हैं या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उससे क्या फ़ायदा। वही फ़ारसी का शायर कहता है, बर ज़ुबान तस्बीह व दर दिल गाओ खर ई चुनी तस्बीह के दारद असर, कि ज़बान के ऊपर तो सुभान अल्लाह और दिल में ये सारे तसव्वुरात हैं, उससे क्या फ़ायदा। हज़रत हकीम उल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं कि मैंने उस शेर में तरमीम की, बर ज़बान तस्बीह दर दिल गाओ खर ई चुनी तस्बीह हम दारद असर, के ज़बान के ऊपर सुभान अल्लाह और दिल में ये ख्याल गधे और गाय वगैरह का, ऐसी तस्बीह भी अपने अंदर असर रखती है, वो भी फ़ायदे से खाली नहीं। हज़रत शेख माना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती के अंदर वाकया बयान किया है, और मैंने हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से बार बार सुना कि जिस ज़माने में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई जाती रही थी, एक मरतबा दोपहर के वक्त अपने हुजरे में तशरीफ़ लाए, पूछा कोई है यहाँ। हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार और हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास थे, उन्होंने कहा मैं हूँ यहिया। और कौन है? इलियास हैं। हमारा इलियास साहब छोटे भाई थे, वो छोटे थे उस वक्त, मैं और इलियास हैं। तो बड़े गोया जोश के साथ हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह का नाम कितनी ही गफलत से लिया जाए असर किए बगैर नहीं रहता। ये शैतानी धोखा है कि आदमी को यूँ सुझाता है कि अरे तेरे दिल में इस तरह के ख्याल आते हैं तो अल्लाह अल्लाह करता है, उससे क्या फ़ायदा? नहीं, कैसी गफलत से अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के नाम का एक असर है। ये जो है ना, जैसे आदमी नींबू और इमली का नाम लेता है तो मुंह में पानी आ जाता है, जब इन मामूली चीज़ों का ये हाल है कि उनके अल्फाज को ज़बान पर लाने से आदमी की तबीयत पर एक असर पड़ता है, तो अल्लाह के नाम का क्यों असर नहीं होगा? दरअसल हमने अपनी ज़िंदगियों को ऐसी गफलत के अंदर गुजारा है कि वो जो फ़ायदा होता है उसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बार बार इन चीज़ों को करते रहेंगे तो फिर आखिर में उसका ज़ुहूर होगा। एक मिसाल से यूँ समझिए, एक मकान है मुद्दतों से वीरान पड़ा है और उसके अंदर गर्द और गुबार की तहें जम गई है, बहुत बड़ी तहें, घुटने तक का गुबार जम गया है। अब आप झाड़ू लेकर के उस गुबार को दूर करेंगे तो झाड़ू के एक दो मरतबा लगने से क्या गुबार दूर होगा? नहीं, वो मुद्दत तक झाड़ू लगानी पड़ेगी तब क्या है वो गुबार साफ होगा। लेकिन बहरहाल पहली झाड़ू जो है उससे भी गुबार तो निकलता है। जैसे आप तराजू के अंदर एक तराजू के एक पलड़े में एक किलो का जो बाट है काटला वो रखें, दूसरे तराजू में एक दाना डालें काई का गेहूं का, तब ये दाना गेहूं का डालेंगे तो क्या वो तराजू हिल जाए, वो पलड़ा हिल जाए? नहीं, इस पर कोई असर, दूसरा डाला तीसरा डाला चौथा डाला, यहाँ तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। देखने में यही है कि कोई असर नहीं, लेकिन आप डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, यहाँ तक कि एक वक्त आएगा एक दाना आखिर में ऐसा पड़ेगा जो उस पलड़े को झुका देगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिरी दाना नहीं झुकाया? नहीं, इस पलड़े को झुकाने में जो हिस्सा आखिरी दाने ने लिया है वही हिस्सा पहले दाने का भी है। अगर पहला दाना न होता तो आखिरी दाना अपना असर न करता। तो इसी तरीके से जब हम कसरत से बार बार अल्लाह का नाम लेते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हमारे दिल की गफलत के पर्दे चाक होंगे, दूर होंगे, और अल्लाह की याद हमारे दिलों के अंदर जमेगी। और ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये गफलत नहीं, वैसे भी हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे फरमाए हैं अल्लाह का, सुभान अल्लाह कहने से इतना सवाब के गोया जो तराजू आमाल नामे का जो है वो सवाब से भर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने का इतना सवाब कि ज़मीन और आसमान के बीच की फिज़ा सवाब से भर जाती है। यार हमें तो यकीन, हमारा जो ईमान और उसमें यकीन में जो कुव्वत होनी चाहिए नहीं है। आज हमें यूँ कह दें कि आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये मस्जिद पूरी नोटों से भर जाएगी तो सब अच्छे अच्छे लोग भी तस्बीह लेके बैठ जाएंगे, नोटों के लेने के लिए तस्बीह लेके बैठ जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से ज़मीन और आसमान के बीच की फिज़ा सवाब से भर जाती है, तो भाई हमारे शौक़ को कोई महमेज नहीं लगती है। लेकिन ये क्या है? ये गफलत है, ईमान की कमज़ोरी की बात है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह का नाम, ये ज़बान ज़िक्रुल्लाह के तीन दर्जे हैं। ज़िक्रुल्लाह के ज़िक्रुल्लाह एक तो है ज़बान से अल्लाह को याद, ये पहला दर्जा। और जब तक ये पहली, वे आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं छत पर, तो छत पर पहुंचने के लिए मान लीजिए कि तीन पगथियों की कोई सीढ़ी है, तो जब तक कि आप पहला पगथिया पार नहीं करेंगे वहाँ तक दूसरे पर नहीं जा सकेंगे, और दूसरा नहीं करेंगे वहाँ तक तीसरे पर नहीं, और तीसरा जब तक पार नहीं करेंगे वहाँ तक आप छत पर नहीं जा सकते। तो गोया जिक्र का पहला दर्जा यह है कि आदमी अपनी ज़बान से अल्लाह को याद करे। तो चाहे दिल में गफलत हो, तो भी करते रहो। एक आदमी ने आकर हमारे सईद ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से फरियाद की कि हजरत जब तस्बीह पढ़ता हूँ तो जबान जबान पर अल्लाह अल्लाह होता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होता है, दिल तो गाफिल होता है। तो हजरत ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे जिस्म के एक उज्व को अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूँगा। अल्लाह ने तुम्हारी ज़बान को अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई, उस पर शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला दिल की गफलत को भी दूर फरमाएंगे और दिल को भी अपनी याद से आबाद करेंगे। तो बहरहाल हकीकत तो ये है कि ज़बान अल्लाह का नाम ले रही है, ये क्या कम फजीलत की चीज़ है, कम शर्फ की चीज़ है, बहुत ऊँचा शर्फ है ये भी। तो बहरहाल ये ज़बान से कसरत से जो ज़िक्रुल्लाह ये तस्बीहात पढ़ने के लिए, ज़िक्रुल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्रुल्लाह ये कलेमात जितने भी हैं और कुरान पाक की तिलावत है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, ये सब क्या हैं, दुआ, ये सब ज़िक्रुल्लाह की मुख्तलिफ क़िस्में हैं और उसके बड़े बड़े फ़ज़ाइल। आप फ़ज़ाइल आमाल के अंदर फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल ज़िक्र और ये सब जो पढ़ते हैं उसमें सारी यही फजीलत है। तो बहरहाल ये ज़बान का, उसके बाद फिर ज़बान से जैसा कि आप मैंने अभी कहा आप कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपके दिल की गफलत दूर होगी और एक वक्त आएगा कि आपका दिल अल्लाह की याद से आबाद होगा और हर वक्त अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की याद आपके दिल में जमी रहेगी और ये चीज़ अल्लाह की इताअत के लिए आपको आमादा करेगी, अल्लाह की नाफरमानी से आपको बचाएगी। और फिर तीसरा ज़िक्र हकीकी, ज़िक्र हकीकी क्या, ज़िक्र हकीकी का मतलब यह है कि हर वक्त बंदे की तरफ अल्लाह का कोई ना कोई हुक्म मुतवज्जे होता है, अल्लाह के उस हुक्म को बंदा पूरा करने वाला। हम मस्जिद में आए नमाज़ के वक्त में तो अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हुआ, कौन सा, नमाज का, हमें नमाज अदा की। घर गए तो अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हुआ, बीवी बच्चों के हुकूक़ की अदायगी का। तो आदमी उस वक्त घर जाकर ये सोचे कि इस वक्त अल्लाह ताला का मेरे ऊपर कौन सा हुक्म मुतवज्जे है, मैं घर में हूँ, अपनी बीवी बच्चों के हुकूक़ अदा करने हैं। दुकान पर जाएगा तो अल्लाह का ये हुक्म मुतवज्जे होता है कि अपनी तिजारत और कारोबार को शरीयत के मुताबिक अंजाम दे। हर वक्त उसके दिलो दिमाग में अल्लाह की याद ऐसी समाई हुई है कि हर मौके का जो हुक्म है उसको बजा लाने का अहतमाम करता है। एक आदमी ने आकर हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, हजरत मुझे सिफत एहसान हासिल हो गई। हदीस में ये दरअसल इशारा है एक हदीस की तरफ, हदीस बुखारी शरीफ में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हज़रत जिब्रील एक अजनबी इंसानी की शक्ल में हाजिर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मल ईमान, मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। उसमें एक सवाल ये था कि एहसान क्या है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नक तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो अल्लाह तो तुमको देख ही रहा है, गोया ये इस्तेहज़ार की कैफियत। तो एक आदमी ने आकर हजरत डॉक्टर साहब से कहा कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ये एहसान की कैफियत हासिल हुई। तो डॉक्टर साहब ने जवाब में पूछा खाली नमाज ही में या घर में जब बीवी बच्चों के साथ होते हो, दुकान पर होते हो, ग्राहक के साथ बात कर रहे होते हो तो भी दिल में ये कैफियत होती है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है। ये तो नहीं हदीस, तो हदीस का मतलब ये था कि ये हदीस का हासिल यही है कि इसकी शुरुआत नमाज से होती है, फिर ये कैफियत बढ़ते बढ़ते पूरी ज़िंदगी को ऐसा घेर लेती है कि उस आदमी की ज़िंदगी का कोई हरकत व सुकून, कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से हटकर नहीं होती। तो ये है गोया ये हकीकी ज़िक्र, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को हमें बनाना है कैसा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। चाहे हमारी ज़बान पर सुभान अल्लाह ना हो लेकिन दुकान पर बैठे बैठे तिजारत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें, आने वाले किसी ग्राहक को धोखा न दें, उसके साथ खयानत न करें, उसके साथ झूठ न बोलें और कोई गड़बड़ न करें, ये समझ कर कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी तरह तिजारत करने का, तो ये हकीकी जिक्रुल्लाह है। जो घर पर हैं अपनी बीवी के साथ जुल्म और ज्यादती न करें, अपने औलाद से मुतालिक जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं उनको बजा लाएं, तो ये है हकीकी जिक्र। गोया हर मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म दिया जाता है उस हुक्म को पूरा करने का अहतमाम करें। बैतुल खला जा रहे हैं तो बैतुल खला जाने का जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसके मुताबिक जाएं और अपनी हाजत को पूरा करें, यह है हकीकी जिक्रुल्लाह। यह हकीकी, ये तीसरा दर्जा, यह आला दर्जा। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे भाई आपके दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, वो दोनों जो है वहाँ दुबई गए हुए हैं, एक बाप के दोनों बेटे। अब एक बेटा है रोज़ाना बाप को फ़ोन करता, अब्बा तबीयत कैसी है, अच्छी है, तबीयत को संभालो, ये करो, सब करो। दूसरा है भैया वो ख़त भी रोज़ाना लिखता, रोज़ाना एक ख़त उसका आता है। दूसरा है ख़त तो नहीं लिखता लेकिन महीना पूरा होने पर जो है ना 10,000 का ड्राफ्ट हमेशा पाबंदी के साथ, दूसरी तारीख का भी इंतज़ार नहीं होता, पहली तारीख को 10,000 का ड्राफ्ट पहुँच जाता है। और वो जो रोज़ाना फ़ोन करता है एक पाई भी भेजता नहीं है। अब उस बाप को पूछेंगे ये तुम्हारे दोनों लड़के वो दुबई वाले याद करते हैं? कोई कहेगा वो तो रोज़ाना उसका फ़ोन आता है। जाने दो ना, फ़ोन आता है वो दूसरा का भी कभी, अरे वो फ़ोन नहीं करता लेकिन हर महीने की पहली तारीख को 10,000 का ड्राफ्ट तैयार। तो बाप के नंदी याद करने वाला कौन है? वो 10,000 का ड्राफ्ट भेजने वाला। ये है हकीकी खिदमत, ये ज़बानी है नहीं। तो हकीकत तो यह है कि ज़बानी अल्लाह का जिक्र जो है, जो अल्लाह के अहकाम को पूरा करने पर आमादा करे, ये है हकीकी जिक्र। ये हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह के अहकाम पूरे होने लगे, अल्लाह ने जो काम करने के लिए कहा है वो करें, जिनसे बचने के लिए कहा है वो बचें, यह है जिक्र हकीकी। और ये कब हासिल होगा? पहले जिक्र लफ्जी, गोया ज़बानी जिक्र, फिर कल्बी, और उसके बाद ये जिक्र हकीकी का दर्जा है। तो बहरहाल ये सारे मरातिब जब तक के वो शुरुआत से हम नहीं चलेंगे वहाँ तक पूरे होने वाले नहीं हैं। कोई आदमी ये चाहता हो कि ज़बानी जिक्र किए बग़ैर इस मकाम तक पहुँच जाए, ये नामुमकिन है। इसलिए बहरहाल जिक्र की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं हमें उसका अहतमाम करना है, सुबह और शाम तस्बीहात का अहतमाम करना है, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करना है, नमाजों का अहतमाम। नमाज भी अकीमी सलात ले जिक्री, कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि मेरी ये नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। गोया ये नमाज भी अल्लाह के जिक्र की एक शक्ल है। ये सारी इबादतें अल्लाह की याद करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो बहरहाल ये सब काम अंजाम देंगे तो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे गोया हमारे दिलों में अल्लाह की याद समाएगी, और यही चीज़ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए आमादा करेगी, यही चीज़ हमको अल्लाह की नाफरमानी और मासियत से बचाएगी। इसका अहतमाम करें, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल हम्द।